श्रीमद् भागवतम फिफ्थ कैंटो चैप्टर 1 टेक्स्ट 16 मुक्तो पितावदि प्रियात् स्वदेहम् 5.1.16 मुक्तो पितावद् विभ्रियात् स्वदेहम्
मुक्तो अपितावद् विभ्रियात् स्वदेहम्
मुक्तो पितावद् विभ्रियात् स्वदेहम्
मुक्तो पितावद् विभ्रियात् स्वदेहम्
आरब्धम् अस्नान् अभिन्मान
शून्या
आरब्धम स्नान अभिमान शून्या जथानुभूतं प्रतियात निद्रा जथानुभूतं प्रतियात निद्रा किं त्वन्य देहाय गुणान् न वृङ्क्ते किं त्वन्य देहाय गुणान् न वृङ्क्ते मुक्तो पितावद् विभ्रियात् स्वदेहम् आरब्धम् अस्नान् अभिमान शून्यः यथानुभूतं प्रतियात निद्रः किं तु अन्यदेहाय गुणान् न वृङ्क्ते
मुक्तो
पितावद् विभ्रियात् स्वदेहम् आरब्धमस्नान् अभिमान शून्यः यथानुभूतं प्रतियात निद्रः किं त्वन्यदेहाय गुणान् न वृङ्क्ते
मुक्तो
पितावद् विभ्रियात् स्वदेहम् आरब्धमस्नान् अभिमान शून्यः यथानुभूतं प्रतियात निद्रः किं तु अन्यदेहाय गुणान् न वृङ्क्ते वर्ड मीनिंग मुक्तः ए लिबरेटेड पर्सन अपि इवन तावत् सोलं विभ्रियात् मस्ट मेंटेन सो देहम हिज वन बॉडी आरब्धम ऑब्टेंड एज रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्टिविटी अस्नन एक्सेप्टिंग अभिमान शून्यः विदाउट एरोनियस कंसेप्शंस जथा आज अनुभूतम व्हाट वाज परसीव्ड प्रतियात निद्रह वन हु हैज अवेकेंड फ्रॉम स्लीप किंतु बट अन्य देहाय और अनदर मटेरियल बॉडी गुणान द मटेरियल क्वालिटीज न नेवर ब्रुंते enjoys. In the translation, Prabhupada Maharaj says, even if one is liberated, he nevertheless accepts the body he has received according to his past karma. Without misconceptions, however, he regards his enjoyment and suffering due to that karma, the way an awakened person regards a dream he had while sleeping. He thus remains steadfast and never warps to achieve another material body under the influence of the three modes of material nature. So in the purport, Srila Prabhupada Maharaj says, the difference between a liberated and conditioned soul is that the conditioned soul is under the concept of bodily life, whereas a liberated person knows that he is not the body but a spirit, different from the body. Priyavrata might have thought that although a conditioned soul is forced to act according to the laws of nature, why should he, who has far advanced in spiritual understanding, accept the same kind of bondage and impediments to spiritual advancement? To answer this doubt, Lord Brahma informed him that even those who are liberated do not resent accepting in the present body the results of their past activities. While sleeping, one dreams many unreal things, but when he awakens, he disregards them and makes progress in factual life. Similarly, a liberated person, one who has completely understood that he is not the body but a spirit soul, disregards past activities performed in ignorance and performs his present activities in such a way that they produce no reactions. This is described in Bhagavad Gita, chapter 3, text 9, Jagyarthat karmananyatra lokoyam karmananana. That means if one performs activities for the satisfaction of the Supreme Personality, Jagya Purusha, his work doesn't produce reactions, whereas karmis who act for themselves are bound by the reactions of their work. A liberated person, therefore, doesn't think about whatever he has ignorantly done in the past. Instead, he acts in such a way that he will not produce another body by fruitive activities. As clearly mentioned in Bhagavad Gita, Vāṅca jo bhyavicārina bhakti yogena sevati sa gunān samati tetān brahma bhūyāya kalpati. That means one who engages in full devotional service, who doesn't fall down in any circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman, thus stated in Bhagavad Gita 14.26. Regardless of what we have done in our past lives, if we engage ourselves in unalloyed devotional service to the Lord in this life, we will always be situated in the Brahma-bhūta or liberated state, free from reactions, and will not be obliged to accept another material body. Taptva dehyang punarjanma naiti mahameti svarjuna, as stated in Bhagavad Gita, chapter 4, text 9. After giving up the body, one who has acted in that way doesn't accept another material body, but instead goes back home to Godhead. So, हम आप सबको स्वागत करते हैं इस भागवत क्लास को. आज हम भी चले जाएंगे. तो गो बैक टू गॉडहेड. तो हम सबको जाना है, भगवत धाम को जाना है, लेकिन मुझे इस भौतिक जगत को और भुवनेश्वर धाम को जाना है. आज जगन्नाथ धाम है. जगन्नाथ धाम जो है, हम यहाँ जगन्नाथ मंदिर में है. तो वो जो ओरिजिनल जगन्नाथ धाम जो है, ये चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, स्कंद पुराण में है. ये जगन्नाथ धाम ये कभी खत्म नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा. भौतिक जगत का ध्वंस हो जाने पर भी वो ऐसे रहेगा, जगन्नाथ धाम, जिसका विस्तार है 10 योजन, दैट मीन्स 80 माइल. तो श्रीमद गौरगुंद स्वामी महाराज और गुरुदेव इन इस्कॉन भुवनेश्वर, वो कहते हैं ये जो जगन्नाथ धाम है भुवनेश्वर से शुरू होता है. हाँ, एक काम करता है. तो ये जगन्नाथ धाम शुरू होता है भुवनेश्वर से. तो इसलिए भुवनेश्वर को, भुवनेश्वर में शिव जी हैं, जिनको कहते हैं वो क्षेत्रपाल है. वो जगन्नाथ क्षेत्र का वो रक्षा करते हैं, क्षेत्रपाल. जो जगन्नाथ धाम को जाएंगे वो भुवनेश्वर से अनुमति लेकर जगन्नाथ को देखेंगे. तो एनीवे, वो जो जगन्नाथ जी जो जगत में सारे जगह है, आज प्रभुपाद के कृपा से प्रभुपाद ने जगन्नाथ को स्थापित किए. वो जगत का नाथ है. वो हिंदू का नाथ नहीं या उड़ीसा का नाथ नहीं, वो जगत का नाथ है. सारे जगत में जगन्नाथ का विग्रह है. ये भी जगन्नाथ का कृपा है. ये भी यहाँ मैंगलोर में कुड़पू काटे में भी यह उपस्थित है. वो जगन्नाथ, वो एक ही जगह में रहकर भी वो सभी जगह रहते हैं. ये भगवान का भगवत्ता है. जिसे शास्त्र में बताया गया है, एक दिश स्थितोस्याग्नि ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा. जैसे एक जगह एक लाइट है, आलोक है, वो सब जगह विचरित होते हैं. इस तरह भगवान तथेदम अखिलं जगत, परस्य ब्रह्मण शक्तिं तथेदम अखिलं जगत. इस तरह भगवान एक जगह होने से भी वो सभी जगह है, होते हैं. ये जगन्नाथ है. तो ये जो हमारा आज का विषय है, ये ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझा रहे हैं। तो जो नेक्स्ट कल का जो भाष्य श्लोक आएगा बहुत गुरुत्वपूर्ण श्लोक है। जो हम सबका 6 पत्नियां हैं ये बताएंगे, 6 पत्नियां हैं। अगर हम वन को भी जाएंगे भय करके ना, ये संसार में हम रहते रहेंगे तो हमारा ये आकर्षण होगा, इस तरह वन को चले जाएंगे तो भी वहाँ हमारे साथ वो 6 पत्नी जाएंगे। ये जो हमारा 5 इंद्रिय होते हैं, ज्ञानेन्द्रिय होते हैं और एक मन होते हैं, ये 6 पत्नियां हैं, ये कल बताएंगे, ये नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे ब्रह्मा जी। तो अभी बता रहे हैं जो भी मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं ये सब हम सभी को भगवान के नियम को मानना चाहिए। वो जो वर्णाश्रम धर्म है इस भगवान का इच्छा है, जो फैमिली लाइफ या गृहस्थ जीवन यापन करने के लिए राजा, तुमको राजा होना चाहिए, तुम्हारा ये दायित्व है। तो वो सोच रहे होंगे तो मैं तो जान गया हूँ, मैं मुक्त पुरुष हूँ, मैं बद्ध जीव नहीं हूँ, मैं जान गया हूँ मैं शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये जो मुक्ति है, ये मुक्ति का मतलब है भागवतम द्वितीय स्कंद 10वां अध्याय बताया गया है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति क्या है, जो मुक्त पुरुष होते हैं वो भी हमारे तरह देखते हैं, वो नहीं उनका 10 हाथ है या 5 सिर है, वो मुक्त पुरुष नहीं, वो वही ऐसे हमारे जैसे लगते हैं दिखते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाएंगे। महात्मा अनस्तु मांग पार्थ दैविंग प्रकृति में आश्रिता। जो महात्मा लोग होते हैं, जो गुरु लोग होते हैं, गुरुसु नरमति, ये एक अपराध है, पद्म पुराण में बताया गया है, अर्चे विष्णु शिलाधीर गुरुसु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि, ये सब पाखंडी है। जो हम भगवान को देखते हैं, भगवान दारू में निर्मित होते हैं, तो 1 साल पहले जो भगवान नव कलेवर हुआ 16 में नव कलेवर जो हुआ, तो वो दारू से निर्मित हुआ। तो हम अगर सोचेंगे ये अर्चे विष्णु शिलाधी, ये 8 तरह का प्रतिमा होते हैं भागवत एकादश स्कंद में बताया गया है, जैसे शैली दारुमयी लिप्या लख्या च सैकति, लौही लिप्या लख्या च सैकति, मणिमयी मनोमयी मैंने प्रतिमा अष्टधा स्मृता, ये 8 तरह का प्रतिमा होते हैं। शैली शिला में भी होते हैं, दारू काठ से भी होते हैं, अभी जगन्नाथ जो मूर्ति है वो काठ से हुए हैं। तो इस तरह जो 8 तरह का वस्तु है उससे भगवान का प्रतिमा गढ़ा निर्मित होता है। तो जो पाखंडी लोग होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, वो सोचते हैं ये क्या भगवान है, ये तो दारू से निर्माण किया गया। देखिए इस हमारे क्या हिंदू क्या है, एक परम संस्था है जिन्होंने वेद को मानते हैं, लेकिन वो भगवान को पूजा को वो जो प्रतिमा पूजा है वो नहीं मानते हैं, ये कहते हैं ये पितला पूजा है, आइडल वर्शिप, ये ठीक नहीं है, आइडल वर्शिप है, ये भगवान नहीं है। तो वेद को मानते हैं लेकिन भगवान को प्रतिमा को नहीं मानते हैं। तो इस तरह का बहुत सारे सोसाइटी है हमारे भारतवर्ष में। तो जो लोग होते हैं जो भगवान को देखकर नहीं मानते ये भगवान, ये तो कास्ट में तैयार हुआ है या शिला में निर्मित हुआ है, तो ये कैसे भगवान हो सकते हैं। तो ऐसे प्रथम पुराण बताया गया है, अर्चे विष्णु श्रीराधि गुरुसु नरमति, गुरु हम जब देखेंगे तो गुरु ऐसे हमारे तरह देखते हैं, गुरु जैसे हमारे तरह देखते हैं, तो हम सोचते हैं हमारा वो भी हमारा तरह है गुरुसु नरमति, लेकिन नहीं, गुरु भागवतम एकादश स्कंद 7वें अध्याय में बताया गया है, आचार्यं मां बीजानीयान् नावमन्येत कदाचित् न मर्त्य बुद्ध्या अस्वीयत सर्वदेवमय गुरु। गुरु को या आचार्यों को कभी अस्वीकार करना नहीं चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, क्यों वो उनका इतना पूजा होते हैं, हमारा क्यों पूजा नहीं होता है, ये द्वेष करके हमारा ये भौतिक जगत में पतन हुआ है। भगवान ने परम उपभोग करी है, हम सोचते हैं हम भी उपभोग करेंगे, भगवान को ईर्ष्या करके हमारा ये भौतिक जगत का जगत में पतन हुआ है। तो भगवान बताते हैं उद्धव को भागवत एकादश स्कंध सप्तदश अध्याय में, आचार्य मांग बिजानिया नाव मन्यत करी, और दूसरा कुछ नहीं सोचना चाहिए आचार्यों को या गुरु को, सर आचार्य मांग भी जाना भगवान के तरह हम सोचना चाहिए गुरु को। इसलिए हम सुबह में वो जो मंगला आरती में गान करते हैं गुरुवाष्टकम में, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्री, ये भगवान की तरह है साक्षात हरित्वेन, भगवान भी बताते हैं आचार्य मांग बिजानिया नाव मन्यत करी नाव मर्त्य बुद्धिया असूय, तो कभी हम उनको हमारे तरह मर्त्य बुद्धि नहीं करना चाहिए, हम उनको असूया या मतलब द्वेष नहीं करना चाहिए। सर्वदेवमय गुरु, गुरु के शरीर में सब देवता हैं। तो इस तरह ये जो है अर्चे विष्णु श्रेयाधीर गुरु सुनारमति वैष्णव जाति बुद्धि, जो वैष्णव हो गए हैं, जो हम सोचेंगे ये छोटा जाति का है, ये इस तरह का सोचना भी ये एक अपराध है, पाषण पाखंडी है। तो जो मुक्ति जो होते हैं, जो मुक्ति क्या है, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम, हमारा जो स्वरूप है उसी को जब हम अगर छोड़ देते हैं उसी हमारे स्वरूप को हम छोड़ देते हैं तो हम बद्ध जीव हो जाते हैं। तो मुक्त जीव को क्या कौन है, जो मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम, जो हमारा वो जो स्वरूप में अवस्थित होते हैं उनको मुक्त जीव कहते हैं। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, स्वरूप जो स्वरूप में रहते हैं वो मुक्त जीव होते हैं, महात्मा होते हैं। तो स्वरूप हमारा क्या है, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं सनातन गोस्वामी को, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हमारा जो स्वरूप है, हम स्वरूप है जो हम भगवान का दास है। भगवान का दास मानना भी ये एक तरह का अभिमान होते हैं, इसलिए यहाँ बताया गया है स्नान अभिमान शून्य, हमको अभिमान से भी मुक्त होना चाहिए। यद्यो हम भगवान के दास हैं, फिर भी हम भगवान के दास मानना भी ये थोड़ा अभिमान हो जाता है। जैसे हुआ था भागवतम के षष्ठ स्कंध में बताया गया है, वो जो राजा थे क्या नाम है, वो राजा भगवान को प्राप्त किए, भगवान शंकरसन का कृपा प्राप्त किए, मुक्त बन गए, फिर भी उन्होंने शिवजी के साथ द्वेष किया, शिवजी से अपराध किया, इसलिए उन्होंने वृत्रासुर बना, चित्रकेतु राजा चित्रकेतु थे, वो भगवान के भक्त थे, भगवान के दास थे, शंकरसन को कृपा प्राप्त हुए। तो लेकिन जब भगवान के दास होकर भी उन्होंने शिवजी के साथ अपराध कर लिए, इसलिए जब वृत्रासुर बने तो वो जब भगवान को प्रार्थना करते हैं, वो चार प्रार्थना है भागवतम षष्ठ स्कंध में बताया गया है, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, चार प्रार्थना है। तो वहां एक प्रार्थना में वो बताते हैं, प्रभु अहं हरे तव दासानुदास, प्रभु मैं आपका दास नहीं बनना चाहता हूं, अहम हरे तव दासानुदास, दास का दास बनना चाहता हूं। भागवतम षष्ठ स्कंध में ये स्तुति है, वो जो चार श्लोक है बहुत गुरुत्वपूर्ण श्लोक है। तो षष्ठ स्कंध 11 अध्याय 24 श्लोक में ये बताया गया है, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदास भवितास्मि भूय, हम आपका दास नहीं बनना चाहते हैं प्रभु, क्यों, क्योंकि हम आपका दास बने और हमारा पतन हो गया, इसलिए प्रभु हम आपका दासानुदास बनना चाहते हैं, आपका जो दास है जो नारद मुनि ये सब जैसे आपका दास है, उनके शिक्षा लेकर मैं आपका दास बन गया, लेकिन मैं आपका दास बनना नहीं चाहता था, इसलिए मेरा पतन हो गया प्रभु, तो इस बार हम आपका दास नहीं बनना चाहते हैं, हम दासानुदास भवितास्मि भूय, हम आपका दास का दास बनेंगे। इसलिए हमारा जो परंपरा है महाप्रभु की परंपरा में जो हम आते हैं, महाप्रभु ये बताते हैं ये हमारा जो मुक्ति क्या है, हमारा क्या असली स्वरूप है वो बताते हैं। महाप्रभु के जीवन का जब हम शॉर्टली बताएंगे तो इसको ये श्लोक है, ये क्या है, आराधना नाम सब जो भगवान है वो आराध्य भगवान ब्रजेश तनया, जो श्रेष्ठ आराध्य कौन है, श्रेष्ठ आराध्य होते हैं ब्रजेश तनया भगवान ब्रजेश, जो कि नंदराज नंद महाराज है उनका जो तनय है, उनका जो बेटा भी है, उनको जो पुत्र है, ये है सबसे आराध्य वस्तु, आराध्य भगवान ये भगवान है ब्रजेश तनय। और इस तरह तद धाम वृंदावनम, उसका जो धाम है वृंदावन धाम, ये भी उस तरह आराध्य है वृंदावन धाम। और उनको कैसे आराधना किया जाएगा, रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण जा कल्पिता, जैसे ब्रजवधु जो सब है, जो गोपियां सब है, वो जैसे भगवान को आराधना करते हैं, ये श्रेष्ठ आराधना है। इसलिए हमारा भुवनेश्वर में श्रीमद गौरवंद से महाराज कहते हैं, जो भगवद गीता में भगवान बताए हैं, अंतिम श्लोक है भगवान का अष्टादश अध्याय में जो श्लोक है, जे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज, ये जो शब्द भगवान बताए, ब्रज शब्द बताए, उस समय उनका वो ब्रज का याद आ गया। इसलिए कुरुक्षेत्र में होकर भी जब अर्जुन को उपदेश देते हैं उस समय भी ब्रज का याद आ जाता है, इसलिए उन्होंने ब्रज शब्द व्यवहार किए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज, ये ब्रज का भाव है, सब कुछ त्याग करके भगवान के शरण में गए थे, ये श्रेष्ठ धर्म है, ये प्रकृत रियल धर्म है, ये प्रकृत धर्म है। तो ये जो जैसे गोपियों ने भगवान के आराधना किए थे, ये श्रेष्ठ आराधना है। रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण जा कल्पिता, श्रीमद भागवतम पुराणम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमार तो महान, श्रीमद भागवतम जो सब प्रमाण है उससे श्रेष्ठ प्रमाण है ये श्रीमद भागवतम प्रेमापमार्थ महान। और जो ये जो मुक्त होते हैं इसको मानते हैं, ये चतुर्थ पुरुषार्थ बताते हैं, ये सब श्रेष्ठ पुरुषार्थ बताते थे। धर्म का मतलब क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो मोक्ष होते हैं उसको लोग सोचते थे ये मुख्य है, धर्म का अंतिम लक्ष्य है कैसे हम मुक्ति पाएंगे। लेकिन महाप्रभु जब आए तो बताए नहीं, ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं, ये चतुर्थ जो ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं, प्रेमा पुमार्थ महान, श्रेष्ठ पुरुषार्थ है प्रेम, कृष्ण प्रेम, ये पंचम पुरुषार्थ ये महाप्रभु ने बताए है, पंचम पुरुषार्थ प्रेमा पुमार्थ महान, ये श्री चैतन्य महाप्रभु और मतमिदम तत्रारण पर, ये महाप्रभु के मत है। तो महाप्रभु बताते हैं हम हमारा जो आइडेंटिटी है, हमारा जो परिचय है वो बताते हैं, वो क्या कौन है, हम कौन है, जिसे सनातन गोस्वामी पूछते हैं, प्रभु हम कौन है, के आमी के न्यामे जा रहे तापत्र, हम ये नहीं जानते। ग्राम्य व्यवहार पंडित ताई सत्यवानी, सब लोग हम उसको पंडित बोलते हैं तो हम इसको मानते हैं, ठीक है मैं पंडित हूँ, लेकिन ये मैं इतना पंडित हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, इतना पंडित नहीं हूँ। तो महाप्रभु बताते हैं प्रकृति में हम कौन है, ना हंग विप्रो न च नरपति न वैश्यो शूद्रवा, हम ये जो वर्णाश्रम धर्म का जो है विप्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये हम नहीं है, नाम विप्रो न च नरपति न वैश्यो शूद्रवा, तो हम कौन है, ना हम बनी न च गृहपति न वैश्य न वनस्थो ज्योतिर्वा, ये जो वर्णाश्रम ये जो आश्रम चार आश्रम का धर्म है, क्या ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, हम ये भी नहीं है।
तो आप कौन है?
किंतु प्रद्युम्न निखिल परमानंद पूर्णामृताभर गोपी भर्तुर पदकमलय दास दासानुदास।
दास का दास भी हम नहीं है, दास दास का दास अनुदास, दास दासानुदास, ऐसे महाप्रभु ने बताए। हमारा जो प्रकृत आइडेंटिटी, प्रकृत परिचय ये है।
तो जो एक ऐसे एक कथा है, जो एक वैष्णव होते हैं वो सब समय भगवान का दास समझते थे, लेकिन जो मुक्त जो अभिमान जो करते हैं ना, ये जो है अभिमान शून्य, जो अभिमान करते हैं वो अपने आप को समझते हैं। एक ये इसमें वैदिक शास्त्र में एक ऐसे सूत्र है सोहम, ऐसे एक मंत्र है सोहम। सोहम मतलब अहम सो सह अहम, वो भगवान हम भी भगवान है, क्योंकि हम भगवान के अंश है। मम अंश जीवलोक के जीवभूत सनातन, हम भगवान का अंश है। तो इसलिए वैदिक शास्त्र में एक मंत्र है सोहम। जो मायावादी लोग वो ऐसे सोचते हैं हम भगवान की तरह हैं, जैसे माँ शंकराचार्य के धारा में जो आते हैं वो सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने दंड धारण कर लिए तो वो दूसरे सन्यासी को जब देखते हैं उनकी संप्रदाय में उनको कहते हैं नमो नारायणाय। इसका मतलब है आप नारायण है, मैं भी नारायण हूँ, क्योंकि मैं दंड धारण कर लिया हूँ तो मैं भगवान बन गया। ये मायावादी फिलोसफी है, मायावादी दर्शन है। तो एक एक मायावादी एक भक्त था, वो मायावादी गुरु से ये मंत्र लिया सोहम। तब जब उन्होंने एक वैष्णव के साथ भेंट हुआ तो वैष्णव ने पूछते हैं तो आप क्या कुछ दिख्या लिए हैं ना? ये हाँ लिया हूँ। ना मंत्र क्या, ना वो मंत्र बताएंगे नहीं, ये सीक्रेट है ना, फिर भी हमको बताओ क्या है मंत्र है? ना सोहम, हमारे गुरु ने ये मंत्र दिया। ना 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 ये मंत्र ठीक नहीं है, इस मंत्र से ठीक है, इस मंत्र से एक एक शब्द जोग करना है, आड़ करना है। क्या? ना दासोहम, सोहम नहीं दासोहम, हम दास है। तो उन्होंने जब इसी मंत्र को जप किया, दासोहम दासोहम दासोहम, इस तरह का मंत्र जप किया, तो सोहम मंत्र जप करने से जो जितना आनंद पा रहा था, इस मंत्र को जप करने से और ज्यादा आनंद पा लिया। तो कुछ समय बाद जब उन्होंने अपने पहले गुरु के साथ भेंट हुआ तो उन्होंने ऐसे बताया, जो इस मंत्र को हम जब चेंज करके हमको एक वैष्णव ने ये मंत्र दिए, हम अधिक आनंद प्राप्त होते हैं। तो गुरु ने बताया ये आपको मंत्र चेंज नहीं करना चाहिए था, ठीक है, फिर भी एक और एक शब्द ऐड करो, और एक अल्फाबेट ऐड करो। ना क्या? ना सदा सोहम, स और एक स लगाओ, सदा सोहम, हम सब समय भगवान है, सदा सो सो। तो उन्होंने इस तरह फिर सो ये करा, ये किया, जो मंत्र पाठ जप किया। तो बाद में जब वैष्णव के साथ मिले तो उन्होंने बताया नहीं नहीं ये इसको चेंज नहीं करना चाहिए, तुम और एक शब्द ऐड करो। क्या? ना दासो दासो हम, दासो दासो हम। तो ये हमारा ये परंपरा में है, ये हम सब समय महाप्रभु कहते हैं। किंतु प्रद्युम्न परमानंद पूर्णामृताभर, ये जो भगवान है ये परमानंद भगवान है, पूर्णामृत है, वो गोपी भर्तृ गोपी को पालन करते हैं, उन्हीं भगवान का हम दास नहीं है, दास दासानुदास। तो जो हम भगवान के दास का अभिमान करते हैं वहां से भी पतन हो जाता है, तो दूसरों का बात क्या कहेंगे। तो प्रियव्रत ये सोच रहे थे तो मैं तो अपने बारे में जान गया हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, हमारे गुरु नारद मुनि ने बताए हैं, तो मैं क्यों ये गृहस्थ जन्म धर्म लेगा, ये राज्य शासन करूँगा, ये सब क्यों करूँगा। तो इसी जो उनका भाव है उसको ब्रह्मा जी जान पाते हैं। तो ब्रह्मा जी इस श्लोक में बताए हैं मुक्तो भी तावत, तुम सोच रहे हो तुम मुक्त जीव हो, फिर भी तुमको ये जो भगवान का निर्देश के अनुसार पालन जीवन निर्वाह करना चाहिए। मुक्तो भी तावत विभ्रियात सो देहम, अभी हम इस शरीर में है ना, ये शरीर जो पाए हैं ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए हैं, ये शरीर पाए हैं क्योंकि हम ये गुण कर्म के अनुसार ये शरीर पाए हैं। सो देह, ये देह जोग, देह जोग है ना तावत,
भागवत पंचम स्कंध में ऋषभदेव ये बताए हैं, एवं मना कर्म वसंग प्रयुक्ते अविद्यात्मनि उपदीयमाना प्रीतिर्न जावन मई वासुदेवे न मुच्यते देहजोगे न तावत। ये देहजोग जो है इस देह धारण से ऊर्ध्व को हम कैसे जाएंगे, जब भगवान के हमारा प्रीति होगा। एवं मना प्रयोग कर्म वसंग प्रयुक्ते, ये जो कर्म के कारण से हम इस शरीर पाए हैं तो ये शरीर से हम छूट नहीं पाएंगे, शरीर से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे जब तक हमारा भगवान के प्रीति नहीं होगा। प्रीति न जावन मई वासुदेवे, ये ऋषभदेव बताते हैं अपने जो शिष्य, ये इसी भागवत में पंचम स्कंध में पंचम अध्याय में आएगा। ऋषभदेव वो भगवान है, वो उनका जो बेटे हैं 100 लड़के हैं, वो जो श्रेष्ठ लड़का था ये भरत महाराज है, उनको बताते हैं प्रीति न जावन मई वासुदेवे। वो अपने आप को वासुदेव बोलते हैं भगवान, वो भगवान के अवतार है। तो न मुच्यते देहजोगे न तावत, देह धारण शरीर धारण से हम ऊर्ध्व को नहीं जा पाएंगे। तो ये यहाँ ब्रह्मा बताते हैं, आरब्धम स्नान अभिमान शून्य, तो हम ये जो अभिमान है हम मुक्त हो गए, इस अभिमान से हमको निवृत्त होना चाहिए, अभिमान शून्य होना चाहिए। तो यथानुभूतम प्रतियात निद्रा, जैसे हम सपने में, ये सपने भागवत में बहुत स्थान में बहुत जगह में ये स्वप्न का उदाहरण दिया गया है, स्वप्न का उदाहरण दिया गया है, सपना निद्रा अनुगो यथा, ये सपनों से भी हम अपने बारे में जान पाएंगे, ज्ञान पाएंगे सपनों से। जैसे हम सपना देखते हैं तो सपने में ही हम भय करते हैं, हमको सांप काट देता है या ऐसे कुछ होता है तो हम भय करते हैं, उस समय हम भय करते हैं। लेकिन जब हम जागृत हो जाते हैं, प्रतियात निद्रा, हम जागृत हो जाते हैं तो हम सोचते हैं ये निद्रा था, ये स्वप्न था, ये ठीक रियल नहीं था, ये ठीक नहीं था, सत्य नहीं था। इस तरह का ये भौतिक जगत का ये जो है, जो हमारा जब अभी जो अनुभूति हो रहा है, ये सब निद्रा जैसा है, स्वप्न जैसा है। जब हम इस स्वप्न से जागृत होंगे तो हम जान पाएंगे जे ये हमारा प्रकृति स्वरूप क्या है, हम भगवान का दास है। ये भागवत में एकादशम में बताया गया है, भयं द्वितीया विनिवेशत स्यात्। पहले ये ब्रह्मा जी बताते हैं, शोक मोह भय, ये भौतिक जगत का लक्षण है। भय कैसे आता है, क्योंकि हम द्वितीय अभिनिवेश होता है, भगवान को भूल जाते हैं, इसलिए हम भय करते हैं। जैसे हम स्वप्न में भय करते हैं, स्वप्न से जागृत हो जाने पर हमारा भय दूर हो जाता है, इस तरह जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो हमको भय आता है। तो जब हम भगवान के शरण में जाएंगे तो हम भय से निवृत्त होंगे, भय से ऊपर जा पाएंगे, शोक मोह भय ये भौतिक जगत का जो लक्षण है उससे पार हो पाएंगे। तो ये जो ब्रह्मा जी बताते हैं, यथानुभूतम प्रतियात निद्रह किंतु अन्य देहाय गुणान न भ्रमते। तो जब तक हम इस शरीर में हैं, इस हमको ये चलना चाहिए कि हम मुक्त हो जाने पर भी हमको ऐसे काम का कार्य करना चाहिए जैसे भगवान का इच्छा है, भगवान का जो रिप्रेजेंटेटिव है, गुरुदेव का जो इच्छा है, इस तरह इसी परंपरा को लेकर जब हम कार्य करेंगे तो हम ये भौतिक ये शरीर से मुक्त पा पाएंगे। तो ये भगवद गीता में प्रभुपाद ने भावार्थ में बताते हैं, यज्ञार्थत कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म मन्नः। जो कुछ भी हम कर्म करेंगे वो भगवान के लिए ही करेंगे, अपने लिए करेंगे तो बंधन होगा, भौतिक जगत में ही घूमते रहेंगे। लेकिन जब इसी कर्म को हम भगवान को अर्पण करेंगे या भगवान के लिए करेंगे तो ये हमारा और कर्म बंधन नहीं होगा। तो हमको ऐसे कर्म करना चाहिए जो कुशली व्यक्ति होते हैं, भगवद गीता में भी बताया गया है, जो भगवद गीता द्वितीय अध्याय में भगवान बताते हैं, जो कुशली लोग होते हैं वो जानते हैं कैसे कर्म करना चाहिए। भगवद गीता द्वितीय में श्लोक याद नहीं आता है, इसमें बताया गया है, जो कर्मजंग बुद्धिजुक्ता ही जो भगवान के लिए जो कर्म करेंगे बुद्धिजुक्तो जहाती उभे कर्मजंग बुद्धिजुक्ता ही फलं तुक्ता मनीषिण जन्म बंधन निरुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्। ये जो जो कर्मसु कौशलम, ये कर्म का कौशल है। सभी लोग कर्म करते हैं, हम भी कर्म करते हैं, लेकिन ये मैंने देखा जाएगा ये कर्म है, लेकिन ये कर्म नहीं है, ये कर्म कौशल है। कर्म कौशल क्या है? जो कर्म करते हैं वो अपने इंद्रियों के लिए करते हैं, अपने जैसे सभी खाना खाते हैं, भगवद गीता तृतीय अध्याय में ये बताया जाएगा। जो पचन्ति आत्मकरणात् सेवने दो, वो सब पाप भोग करते हैं, पाप भूगते हैं, पाप भूगते हैं। पचन्ति ते यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्व कृपेसि भुंजन्ते तु अघं पापा जे पचन्ति आत्मकारणात्। सभी लोग रसोई करते हैं, रसोई करते हैं, खाना खाते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन वो अपने लिए करते हैं, अपने जिह्वा को तृप्ति देने के लिए करते हैं। लेकिन हम जब हम भक्त लोग जो रसोई करते हैं, रंधन करते हैं, तो भगवान को भोग अर्पण करते हैं। तो जब हम इसी खाद्य को भगवान को अर्पण करेंगे तो हम पाप से मुक्त हो जाएंगे, उसी प्रसाद को लेंगे। ये जब और दूसरे लोग जो करते हैं इस तरह का है, एक ही बात है, रसोई करते हैं, सब करते हैं, लेकिन ये कौशल है, कर्म कौशल है। जो जैसे कर्म करेंगे इस कर्म का हम बंधन में नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे कर्म करने से हमारा जो जीवन का अंतिम लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे हमारा भागवत को हम विश्राम देंगे, हम आपसे भी विदा लेंगे, हम आज रहेंगे आपसे। बहुत बहुत हमारा आभारी व्यक्त करते हैं, आपने मुझे आपका संग दिए, प्रदान किए। भगवान जगन्नाथ के पादपद में मेरा प्रणाम निवेदन करता हूँ, उन्होंने कृपा करके मुझे यहाँ बुलाए थे। और उडुपी है, यहाँ अनंत पद्मनाभ है, उन सभी को पदपद में मेरा अपना प्रणाम करके मेरा कथा को विश्राम देता हूँ। जय श्रीमद् भागवतम की। तो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं, ये जो है ये बहुत कंट्रोवर्शियल प्रश्न है। तो ये जब हम जो चित जगत में होते हैं वो कभी भौतिक जगत में पतन नहीं होता है। चित जगत में होते हैं, जैसे भागवत में शास्त्र में उन्हें बहुत सारे जगह बताया गया है, जग गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, भगवद गीता पंचदश अध्याय में ये बताया गया है। न जद्भाष्य सूर्यो न शशांको न पावक जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। ये भौतिक जगत के ऊपर जो है चित जगत है, वहां जो जाते हैं वो कभी भौतिक जगत को नहीं आते हैं। तो हम शुरू से कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, तो ये अनादि शब्द है उसको हम सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा आदि है। इसलिए हम सोचते हैं कब हमारा ये होती जगत के पतन हुआ था, डेट जानना चाहते हैं, शुरू जानना, शुरू कब शुरू हुआ है जानना चाहते हैं, आदि कब शुरू हुआ है। किंतु ये अनादि है, हम सदियों से शुरू से अनादि भगवान को भूल गए हैं, या भगवान की तरह उपभोग करना चाहते हैं, इसलिए भौतिक जगत है। हमारा उपभोग का क्षमता नहीं है। जैसे उदाहरण स्वरूप फॉर एग्जाम्पल, हम खाना खाते हैं, जब खाना खाएंगे तो जिह्वा से हमारा उदर को जाएगा, हमारा जो पाकस्थली है स्टमक को जाएगा, वहां से शरीर का सभी अंग खाद्य पा सकते हैं। लेकिन अब जगह अगर हमारा हाथ चाहेगा तो हम खुद खाएंगे, तो जो खाद्य को रखकर वो खाना वो एंजॉय नहीं कर पाएगा, या हमारा खाना को हमारा आँख में डाल देंगे तो हमारा आँख नष्ट हो जाएगा। तो इसी तरह हम भगवान का अंश है, तो हमारा उपभोग का क्षमता नहीं है, किंतु हम उपभोग करना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने माया जगत बनाए। माया जो नहीं है वो माँ, या माँ मतलब नहीं, या मतलब ये
जो नहीं है ये माया है, इसलिए हम अपने आप को पुरुष मानते हैं, उपभोगकारी मानते हैं। उपभोगकारी भगवान है, हम जब उपभोग करी कृष्ण बोलिए सही जीव अनादि बहिर्मुख, इस तरह और एक पैर है जे जीव भोगवांछा करे, जीव जब भोगवांछा करे जैसे वो एंजॉय करना चाहते हैं तो निकटस्थ माया तरह झापटिया धरे, इमिडिएटली माया भौतिक जगत में है रहते हैं। तो ये कब हुआ ये हमको ये हम जान नहीं पाएंगे, ये सब सदियों से बिगिनिंग फ्रॉम बिगिनिंग अनादि, इसलिए सब समय हम है भौतिक जगत में है, घूमते रहते हैं भौतिक जगत में। चलता है, चलती रहे, नाश होगा फिर होगा, बेंगलोर भी होगा, बेंगलोर भी होगा, सब जगह होगा, फिर ध्वंस हो जाएगा, फिर होगा, फिर होगा, दुबई भी होगा सब। तो ठीक है, नॉन वेज होने से भी कुछ कोई बात नहीं, अगर भगवान कहेंगे तो हमको मांस दो तो हम भी भगवान को मांस देंगे। भगवान बताते हैं पत्र पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता प्रयचती, जो भगवान कहते हैं हमको ये दो तो हम भगवान को दिए, जो तोयम दिए भगवान को, जल दिए, खीर दिए, पया दिए, इसको दिए, भगवान बताते हैं हमको दो तो हम दिए, तो अगर भगवान कहेंगे तो हमको मांस दो हम भगवान को मांस देंगे उसको खाएंगे। जैसे जो देवी को अर्पण किया जाता है मांस, देवी को अर्पण किया जाता है तो उसी खाने से वो और उसका रिजल्ट नहीं होगा, सिंपल रिएक्शन नहीं होगा, ये जो मांस खाने, इसलिए वेद में मांस जो खाना चाहते हैं तो इस तरह का व्यवधान है, इस तरह का व्यवस्था है। लोके व्यवहार आमिष मध्य सेवा, आमिष भक्षण है लोग का प्रवृत्ति है, तो इसलिए वो देवी को दिया जाता है, बलि दिया जाता है, उसी मांस को आप खा सकते हैं, शुद्ध नहीं होगा उसका, ये क्योंकि ये भौतिक जगत का ही है, तो देवी जो है वो भी भौतिक जगत का है, तो अंतवतु फलम तेषां, तो जो फल होता है उसका भी पाप। हाँ, मांस का मतलब क्या है, मांग मांग मतलब मांग मते मुझको, स मतलब से हुई, तो रिएक्शन होगा, लेकिन क्योंकि हमारा प्रवृत्ति है हमको इसको एक पूरी तरह बंद नहीं कर पाएंगे, इसलिए वेद में ये व्यवस्था है, ये महीने में एक बार जो अमावस्या तिथि है उस समय ये मांस आप खा सकते हैं, इसमें वेद में ये व्यवस्था है।
देवी लोग तो ऐसा
देवी नहीं खाते हैं, देवी का जो जो है चंडी सब सामने है वो खाते हैं, वैष्णवी, वो वैष्णवी है ना, शिवजी परम वैष्णव है, तो उनका पत्नी कैसे मांस खाएंगे, वो वैष्णवी है तो वो नहीं खाते हैं, वो जो उनके जो लोग होते हैं सेवा करते हैं चंडी चामुंडी ये सब जो होते हैं वो खाते हैं, इसको खाते हैं। जैसे भरत महाराज का बारे में पंचम स्कंद में आएगा, जब भरत महाराज को ले जा रहे थे उस दस्यु ने, तो उनको भरत महाराज को काटने के लिए वो खंडा खड़गा जो उसको ये करे, उस समय देवी प्रकट हुए, भद्रकाली प्रकट हुए और उसी खड़ग से उनका शरीर से सिर छेद कर दिए, जो भरत महाराज को छेद करने के लिए गए थे, और जो सब दुष्ट थे उनको भी सब काट दिए, और जो उनका रक्त जो था वो सब उनका जो चंडी चामुंडी है वो सब पान किए। देवी वो परम वैष्णवी है, वो
रेस्टोरेंट
नहीं, ये व्यवस्था है ना, ये व्यवस्था है वेद में बताया,
मनुष्य नहीं
छाग, हाँ छाग मनुष्य का बलि देना शास्त्र में नहीं है। जय प्रभु महाराज। जगन्नाथ का कृपा होगा, आपके कृपा होगा तो फिर हम आएंगे।